ओम शांति। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं कि दादी जी को कौन कौन नहीं देखा है वो हाथ उठाए। अच्छा, इतने लोग दादी को नहीं देखे हैं। ओके, ठीक है। हमारा टॉपिक है पूर्वजों के बारे में, दादी के बारे में, दादी जानकी के बारे में, गुलजार दादी के बारे में जानकारी देने के लिए। हम सब भाग्यशाली हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं कि हम किसके छत्र छाया में हैं, बता सकते हैं? अनुभव तो सुना सकते हैं, किसके छत्र छाया में है? बाबा के छत्र छाया तो है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन साकार में बाप दादा मम्मा दादियों की ये छत्र छाया है। आज जो हम बैठे हैं, एक दिन था बाबा आए हुए थे, बाबा जा रहे थे मुरली सुना करके, पार्टियों से मिल करके 2:30-3 बजा होगा। तो उस समय दादी जी और जो भी बड़ी दादियां होती थी बाबा को विदाई देने आती थी। तो बाबा कह रहे थे कि बच्ची, आपको ख्याल नहीं चलता है कि बच्चे बढ़ रहे हैं तो कहीं मकान लेना चाहिए, कहीं जमीन लेना चाहिए, कहीं कुछ करना चाहिए। रात को 2:30 बजे की बात है। तो दादी जी ने कहा कि बाबा, कहां भी जमीन नहीं मिलता है और माउंट आबू में मकान बनाना बैंड है। भगवान से बात हो रही है। तो बाबा ने कहा कि जमीन मिलेगा, मकान भी बन जाएगा। कभी हम लोगों ने साल गांव के लिए सोचा नहीं था कि साल गांव में इतना अच्छा एकेडमी बनेगा, इतना बड़ा विशाल ऑडिटोरियम भी बनेगा, कभी सोचा नहीं था। रात को 2:30 बजे भगवान से रूरिहान हो रही है दादी जी का। दूसरे दिन ये गांव साल गांव है, यहां दूध गौ पालने वाले लोग रहते हैं, तो ये लोग शुरू से दूध आश्रम में देते हैं। चाहे दिवाली पर यहां बहुत रस होता है, डबल कीमत हो जाती है, फिर भी ये लोग मार्केट में नहीं देंगे, बाबा के घर में देंगे, इतनी भावना इनमें है साकार बाबा के टाइम से। तो दूसरे दिन ये सुबह आते हैं गांव वाले, 3-4 लोग मिलकर आए, भाई दादी से मिलना है। क्यों भाई, क्या हो गया आपको, कुछ कंप्लेन है तो सुना दो। अतः नहीं, हम आपको नहीं सुनाएंगे, दादी जी से मिलना है। ठीक है, तो दादी से मिलना है, ठीक है। दादी को बताएं, हमारा बल्लभ भाई एक होते थे, उन दिनों में सारे चीज की परचेजिंग उनके हाथ में होती थी, दूध भी वही परचेज करते थे, हिसाब देते थे। तो वल्लभ भाई गए दादी के पास कि दादी, दूध वाले आपसे मिलना चाहते हैं। दादी बोले, भले भले बुलाओ। तो दादी से मिले, तो उन्होंने कहा, दादी बच्चों की शादी है, हमको थोड़ा ये जमीन निकालना है। भगवान से रात को बात हो रही है, सोचिए, कहीं वो तब तक कुछ आइडिया नहीं है, कुछ दिखाई नहीं देता है। और 10 बजे दूध वाले दूध लेकर आए, दूध दिया यज्ञ में, और कहा कि दादी से मिलना है, कभी दादी से मिलने नहीं है ये लोग। ठीक है भाई, तो दादी ने बुलाया, मिले। तो उन्होंने कहा कि बच्चों की शादी है, मुझे ये जमीन निकालना है, कौन सा जमीन है, अभी दादी तक अभी इधर आई नहीं है, रोड नहीं था, वो एक ही रोड वो दिलवाड़ा जो जाता है वही रोड था। तो दादी ने बोला कि ठीक है, ये भाई लोगों को भेजते हैं, इनको जमीन दिखाओ। तो बल्लभ भाई थे, बल्लभ भाई हमारे ही रूम में रहते थे, तो बल्लभ भाई ने कहा कि आप भी चलो, मैं भी आया। एक ताराचंद भाई थे वो भी आए, हम तीन चार भाई आए। तो आकर के देखा तो ये खंडहर था, कटीली झाड़ियां थी, पेड़ एक भी नहीं था। अगर बरगद का कोई पेड़ एक बचा था तो खाली उसकी डंड टहनियां बची थी, क्योंकि पत्ते गांव वाले बकरी के लिए और जानवर के लिए काट करके खिला देते थे। तो हम लोग आए, देखा, पसंद तो नहीं आया, फिर भी देख करके डिसीजन तो नहीं ले सकते हैं ना। दादी को बताया, दादी वो तो बहुत खंडहर है, ये है वो है। दादी ने कहा कि मेरे को भी दिखाओ। हम बोला कि दादी आप जा नहीं सकते हैं, अब तो तुम लोग जा सकते हो, दादी को क्या समझते हो। दादी में इतना पावर था, विल पावर था, दादी को क्या समझते हो, जहां तुम जा सकते हो वहां दादी नहीं जा सकती है। तो हम लोग चुप हो गए। अच्छा दादी चलिए ठीक है। शाम के टाइम दादी तैयार हुई और वहां डामर रोड तक वहीं गाड़ी आती थी, तो वहां तक दादी आई और वहां से दादी पैदल आई है। सोचो, पगडंडी था, एक व्यक्ति के जाने वाला गांव में रास्ता होता है, शायद आप लोग शहर के हैं तो पगडंडी नहीं समझे। तो एक मतलब कि रास्ता था। दादी आई, दादी वहां कोने पर खड़ा होकर के दृष्टि पावरफुल दिया और दादी ने कहा कि कोई बात नहीं है, कुछ नहीं होगा, इन बेचारे गरीब हैं, इनको जरूरत है, पैसा दो, ये रजिस्ट्री कराओ। दूसरे दिन रजिस्ट्री हो जाता है, दादी देख के गई है, दूसरे दिन रजिस्ट्री हो गई है। दादी में इतना पावर था, इतना चमत्कारी दादी थी, ब्रह्मा कुमारी में आकर के हुई नहीं। दादी का जब जन्म हुआ तो उनके फादर ज्योतिषी थे, हाथ देखने वाले जो होते हैं ना, ज्योतिषी थे। दादी का हाथ देखा तो कह दिया घर में कि ये बच्ची मीरा बनेगी, ये घर में नहीं रहेगी। जन्मते फादर ने डिक्लेयर कर दिया घर में। और दादी जैसे जैसे बड़ी होती गई, पढ़ाई में भी बहुत तेज, हर उनका एक्टिविटी बहुत पावरफुल तेज, छोटी थी लेकिन एक्टिविटी बड़ों जैसा था। तो दादी ने उनको ये किया और दादी हाई स्कूल में गई, फर्स्ट क्लास फर्स्ट होती थी। मम्मा, दादी ये सब तेज स्टूडेंट तो आप समझते हैं, आप लोग भी रहे होंगे, वो आगे बैठते हैं तो फर्स्ट बेंच पर मम्मा दादी इकट्ठे बैठती थी। दादी सुनाती है, सुनाती थी। तो छुट्टियों का दिन था, दादी घर में बैठी थी, बाबा का सत्संग शुरू ही हुआ था, तो उनके फादर ने कहा कि बच्ची तुम बैठी है, छुट्टियां हैं, काम नहीं है, तो तुम बाबा के दादा के सत्संग में जाया करो, वो गीता के ऊपर सत्संग सुनाते हैं, बहुत अच्छा सुनाते हैं, अब जाया करो। क्योंकि फादर को तो पहले ही था कि ये घर में रहने वाली कन्या नहीं है। तो उनके फादर ने भेजा और बाबा सत्संग करा रहे थे, पीछे जाकर के बैठी और बाबा ओम का ध्वनि लगाए तो दादी ट्रांस में चली गई। साक्षात्कार होने लगा दादी को, ओम का ध्वनि पूरा हुआ, अब सब धीरे धीरे उठ के अपने अपने घर चले गए, दादी अकेले। ट्रांस में साक्षात्कार हो रहा है, बाबा बैठे हैं, क्योंकि बाबा कैसे जाएंगे, एक बच्ची बैठी है उसको छोड़ करके जाएं, बाबा बैठे थे। जब दादी नीचे आई तो देखा कि यहां कोई नहीं है, बाबा केवल हैं, तो दादी भी चुप से, अनुभव नहीं सुनाई, चुप से घर चली गई। और फिर दोबारा आई तो बाबा के पास रह गई। दादी बहुत निश्चय से अनुभव सुनाती थी अपना, कि दादी एक बार यज्ञ में पांव रखा, दोबारा घर नहीं गई। देखिए इतना पावर दादी में। और तब से दादी इतना ज्ञान योग में आगे गई कि बाबा और भाई बहने उनको मिन्नी मम्मा कहते थे, मम्मा तो मम्मा थी ही थी, मिन्नी मम्मा कहते थे, पालना देती थी, ज्ञान योग में नंबर वन थी। तो बाबा धीरे धीरे यज्ञ की जवाबदारी दादी के ऊपर सौंपते गए। जब बाबा ने विल किया तो 8-10 कन्याओं का एक ट्रस्ट ग्रुप बनाया और उनके आगे अपनी चल अचल प्रॉपर्टी सब विल कर दिया, तो उसमें दादी भी थी, बाबा के परिवार का नहीं। निर्मो शांता दादी इतनी नंबर वन, लेकिन निर्मो शांता उसमें नहीं थी, और दादियां थी, हमारी मम्मा थी, दादी थी, दीदी थी, शांतामणि दादी थी, तो ये चंद्रमणि दादी थी, तो इन लोगों को व्हील कर दिया और दादी आगे बढ़ती गई। कहीं फंक्शन हो, कोई प्रोग्राम हो, कहीं भाषण करना है तो बाबा दादी को भेजते थे। शुरू से दादी बहुत ज्ञान योग धारणा में बहुत आगे थी। तो अब यज्ञ में जब सेवा पर दादी को बाबा भेजते थे, विदेश सेवा शुरू हुई तो पहले जापान में, यहां से दादी गई, रतनमयी दादी थी, जो रतनमयी दादी आज हैं, दादा आनंद किशोर, तीन का डेलीगेशन गया जापान में 15 दिन के लिए, उन्होंने निमंत्रण दिया था, दादी वहां 3 महीना रही। तो इतना डिटेल में जाएंगे तो हम विदेश में ही रहेंगे, हमको थोड़ा थोड़ा सब कुछ बताना है, सुनाना है आप लोगों को। तो दादी इतनी ब्रिलियंट थी, मम्मा अव्यक्त हुई तो धीरे धीरे दादी दीदी के ऊपर जवाबदारी, दीदी को, दीदी भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, स्कूल में नहीं गई थी हमारी दीदी, लेकिन डायरी पेन उनके साथ रहता था। यज्ञ में छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया गया तो दीदी को भी पढ़ाया गया, और दीदी मुरली इतनी गहराई से अध्ययन करती थी, सुनती थी, कि आज जो क्वेश्चन आंसर आप लोग मुरलियों में सुनते हो, वरदान सुनते हो, वो दीदी के डायरी से निकाला हुआ है। और दीदी बाबा के टाइम हो या दादी के टाइम में, हमने आंखों से देखा, घुटने में उनको तकलीफ था, लेकिन दीदी कभी 2 मिनट लेट नहीं गई होगी, 5 मिनट पहले जाकर के, बाबा मुरली सुनाना है, 5 मिनट पहले आकर के बैठ जाती थी, दादी के आने के पहले 5 मिनट पहले बैठ जाती थी। आज तो 7 बजे क्लास होता है, पहले 6:30 बजे होता था, 6:30 बजे दादी डॉट टाइम मुरली, बाबा के टाइम में 6:30 बजे होता था। तो मतलब कि ये दादियां वतन की थी, पता नहीं कैसे भूल से सकार वतन पर आई। तो हमारी दादी प्रकाशमणि, इनको सेवा पर बाबा भेजा करता था, पहले पटना में जहां सेवा होता था दादी जाती थी, जहां भाषण करना है दादी जाती थी, पटना में भी रही, बिहार में बहुत सेवा की, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को दादी ने निकाला, बाबा का बनाया। फिर बाबा ने, बाबा एक जगह नहीं भेज रखते थे दादी को, यहां है तो सेवा जमाया है तो यही बैठी रहे, नहीं, पटना से दादी को बॉम्बे भेजा। बॉम्बे से दादी पार्टी लेकर के आई थी और दीदी को इलाहाबाद मेले में भेजा था। अव्यक्त की बात कर रहा हूं, देखो फास्ट जा रहा हूं क्योंकि टाइम घड़ी बहुत फास्ट जा रही है। तो दादी पार्टी लेके आई है, दीदी जो यज्ञ की मम्मा के बाद यज्ञ का कंट्रोलर, मम्मा का स्थान पर सारी यज्ञ की जवाबदारी दीदी संभालती थी। तो बाबा ने दीदी को कुंभ मेले में भेज दिया, दादी पार्टी लेकर आई थी। तो पार्टी तीन दिन चार दिन में तो चली जाती है, तो पार्टी जा रही थी तो दादी को बाबा ने बुलाया, बच्ची बॉम्बे में कुछ जरूरी काम है? आ तो नहीं बाबा, कोई काम तो नहीं है, कोई ऐसी सर्विस तो नहीं है। आ तो रुक जाओ, पार्टी को भेज दो, आप रुक जाओ। 16 तारीख की बात है, दो दिन पहले की बात है, अव्यक्त होने के पहले की बात है। दो दिन में बाबा ने दादी को उंगली पकड़ करके हर डिपार्टमेंट दिखाया, हर स्टोर दिखाया, कहां क्या चीज रखा है। दादी को लगे कि मेरे को यहां रहना तो है नहीं, रहती तो दीदी है, मेरे को बाबा क्यों दिखा रहा है। लेकिन दादी पूछ नहीं सकती है, बाबा मेरे को क्यों दिखा रहे हो, ये तो दीदी की जवाबदारी है। स्टोर, हर चीज, हर डिपार्टमेंट, कारपेंट्री, हर डिपार्टमेंट, दो दिन दादी को उंगली पकड़ करके सब कुछ बाबा ने दिखाया। बाबा की तबीयत थोड़ी खराब थी, 18 जनवरी सुबह थोड़ी तबीयत खराब थी। तो दादी ने कहा कि बाबा तबीयत आपकी ठीक नहीं है तो मैं मुरली सुना देती हूं, जाकर के मैं क्लास करा देती हूं, आप थोड़ा रेस्ट करिए। बाबा ने कहा अच्छा ठीक है बच्ची करो। दादी जाकर के मुरली सुनाई 18 जनवरी को, बाबा नहीं आया। लेकिन बाबा रेस्ट नहीं किया, जितना बाबा के पास पत्र आए थे सबका जवाब बाबा ने 18 तारीख को सुबह दोपहर तक सब पत्रों का जवाब दिया। दादी भी साथ में बैठ करके लिखती रही और शाम के टाइम में बाबा ने दादी को बुलाया कि बच्ची बाबा सुबह मुरली नहीं सुनाए हैं तो सब बच्चों का संकल्प चलता होगा कि बाबा बीमार हैं, बाबा कैसे हैं, मुरली आज मिस हुई है, कभी बाबा मुरली मिस नहीं किया है, तो बाबा मुरली सुनाएगा, सब बच्चों को जल्दी भोजन करा दो। तो उन दिनों में क्या होता था, घंटी बजता था, जैसे स्कूल में, हाई स्कूल में बेल बजता है ना, तो अपने आश्रम में बेल बजता था। दादी ने बेल बजवा दिया, सब लोग भोजन जल्दी किए और दादी, क्योंकि अनाउंसमेंट सिस्टम नहीं था, आज जो सिस्टम बना हुआ है, कुछ कहना है तो अनाउंसमेंट होता है, फलाना आ रहा है, फलाना जा रहा है, ये करना है, वो करना है, अनाउंसमेंट होता है। उन दिनों में कुछ नहीं, इमरजेंसी के लिए आप गए होंगे शांति स्तंभ पर, रहते एक बड़ा पेड़ है, उसमें एक डाली पर, एक मंदिर में जैसे बड़ा घंटा होता है ना, लोग घंटा बजाते हैं, तो एक घंटा वहां बंधा हुआ था, कोई इमरजेंसी आएगी, इमरजेंसी क्या आती थी, चावल बाहर शांति स्तंभ में सुखाया जा रहा, रात्रि को सुखाते थे, गेहूं दिन को सुखाते थे, अचानक बारिश आ रही है तो बेल बजता था, हम सब उठ करके दौड़ कर आते थे, गेहूं चावल उठा करके बोरी में डाल करके अंदर रखते थे। तो इमरजेंसी बेल वो था, और यहां जहां थल्ला है वहां नॉर्मल ये था। तो दादी ने बेल बजवाया, सब भोजन करके फटाफट 8 बजे क्लास में आ गए, हिस्ट्री हॉल बना हुआ था। तो वहां बाबा आए, मुरली आधा घंटा सुनाया और वहां से बाबा लास्ट में सारी शिक्षाएं दी, सब कुछ सुनाया और बाबा हमेशा जब हॉल से निकलते थे तो पीठ दे करके नहीं निकलते थे, कभी भी बाबा बच्चों को पीठ दे करके नहीं निकलता था। जैसे पीछे आदमी कैसे चलता है, तो बाबा पीछे चलते थे, बच्चों को दृष्टि देते देते दरवाजा क्रॉस करते थे। उस दिन बाबा ने मुरली सुना करके दरवाजे से खड़ा होकर के बाबा कहते हैं, अच्छा बच्चे बाबा विदाई लेता है। तो बाबा इतना अच्छा मुरली चलाया है, उमंग उत्साह ये किया है, ये थोड़ी ख्याल हुआ कि बाबा अब जा, ये लास्ट बाबा की आवाज है, लास्ट दृष्टि हमको मिल रही है। तो बाबा अपने रूम में चले गए, चारपाई पर बैठ गए, दादियां छोड़ने के लिए रूम तक गई तो दृष्टि बाबा देने लगे तो सब दादियां सामने आ गई, दादी भी थी। तो दादी के हाथ में बाबा हाथ देकर के दृष्टि देते देते बाबा अव्यक्त हो गए। देखिए दादी का कैसे चमत्कार, दादी का हाथ बाबा के हाथ में है, पावर बाबा ट्रांसफर कर रहा है। दादी को लगा कोई पावर आ रही है, कुछ सेकंड में बाबा का हाथ ढीला हो गया, ठंडा हो गया। तो दादी समझ गई कि बाबा को कुछ हो रहा है, बाबा को लेटा दिया और तब तक डॉक्टर बुलाया। डॉक्टर आया, बाबा अव्यक्त हो चुका था। डॉक्टर ने कहा कि बाबा नहीं है, आप लोग जो करना है वो करिए, आप आपकी जो विधि है, बाबा अभी नहीं है। दादी पहली बार यज्ञ में, अब इतना दादी को पावर आ गया, एक आंसू नहीं आया, किसी को आंसू नहीं बहाने दिया और सबको फोन किया। जिसको फोन करे उसको विश्वास न हो, अरे दादी तुम तो बॉम्बे में रहती है और तुम क्या करती है, बाबा अव्यक्त हो गया ऐसे कैसे बात करती है, किसी को विश्वास न हो। दादी सबको विश्वास दिलाई कि भाई मैं पार्टी लेके आई थी, बाबा ने मुझे रोका था, ऐसे ऐसे घटना हुई, बाबा अव्यक्त हो गया। सबको रात भर दादी फोन किया और इतना पावर दादी में आ गया, कोई भी आंसू बहाए दादी दृष्टि दे नहीं, बाबा बैठा है, बाबा गया नहीं है। सब लोग आए लेकिन रात भर फोन किया किस, और उन दिनों में फोन बुक किया जाता था, मोबाइल नहीं था, मोबाइल तो अभी आया है, कॉल बुक करने यज्ञ में दो ही कॉल टेलीफोन होते थे, एक निर्भय भाई के ऑफिस में, एक ईशु दादी के ऑफिस में। ईशु दादी के ऑफिस में बैठ करके रात भर फोन किया, जिसको फोन करे वही दादी को दो बात सुना दे, डांटी लगा दे, क्या बात करती है, ऐसे मजाक किया जाता है, ऐसे बोला जाता है, बाबा अव्यक्त हो गया, किसी को विश्वास न हो। दादी बोले कि नहीं मैं ठीक बोल रही हूं, आप आ जाओ। इतनी दादी में पावर, सबको कंट्रोल किया और दादी को फिर 21 तारीख को दो दिन के बाद भोग लगा बाबा का, वो तो बहुत बड़ी कहानी ये है। तो भोग लगा तो बाबा आकर के दादी दीदी को निमित्त बनाया, दीदी का अंदर के कारोबार का निमित्त बनाया, दादी को बाहर का निमित्त बनाया, दोनों मिल करके इतना दादी निर्माण मैंने देखा आंखों से। 70 से आता जाता था, सेवाधारी में आता था, 73 से तो वहीं रहता था दादी के साथ। दादी की इतनी विजन थी, कोई बीमार होगा दादी को फट से ये आएगा, अरे वो बच्चा वो भाई दिखाई नहीं देता है, आप जरा जरा जा करके देखो। मैं जाके देखता था तो फीवर है, उसको कोई तकलीफ है, रूम में लेटा है, दादी को आकर सुनाते थे, दवा वगैरह देते थे, संभाल करते थे। एक भाई पंडित नाम का था, वो पहरा देता था, तीन दिन से दिखाई नहीं देता था। दादी बोली कि वो पंडित तीन दिन से दिखाई नहीं देता है, जरा देखो कहाँ है। वो रहता था मरगोल में, अभी मरगोल में इतना ऊपर कौन चढ़ करके जाए उसको देखने के लिए, करने के लिए, तो अकेले बीमार, 104 टेम्परेचर, तड़फ रहा है। दादी को आहट आई, दादी ने मेरे को भेजा, उसको हम यूडिकुलन डाल करके आइस वाटर से पहले टेम्परेचर उतारा, टैबलेट दिया, फिर उसको नीचे लाया, दादी को बताया। तो दादी को इससे विजन आता था, कोई नया काम करना होता था तो दादी बोलती थी मैं क्या करूं। उसके बाद फर्स्ट टाइम ट्रांस में गई, दोबारा दादी ट्रांस में नहीं गई, लेकिन तब दादी उनको विजन आता था। जब कहीं बाहर जाती थी, बाबा से छुट्टी लेने जाती थी, तो ऐसे समाचार सुनाती थी कि बाबा ने कहा कि बच्ची तुमको ये वहां स्थान पर जाके करना है। दादी से इतना बाबा का कनेक्शन था, ट्रांसलाइट से भी दादी को आवाज आती थी। अपने रूम में सोती थी तो सुबह उठती थी तो बाबा सामने खड़ा हो जाता था, बच्ची तुमको ये करना है। मुरली के बाद हम लोगों को बुलाती थी, बाबा क्या करें, बाबा सोने नहीं देता है, आंख खुला बाबा बोलता है बच्ची तुमको ये करना है। अब आप लोग बताओ, दादी का ऐसा राय है, क्या करना है? एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, बड़ी दादी, और राय हम लोगों से पूछती है। ये नहीं कहती है कि दादी का ये ऑर्डर है, ये है, यही करना है, बाबा ने दादी को ये कहा है, नहीं। इतना रहम, इतना क्या कहेंगे, सॉफ्ट, इतना निर्माण दादी, कभी अहम नहीं। हर चीज में बेगरी पार्ट था, अभी थोड़ा उभर गए थे, ऊपर आ गए थे, लेकिन दादी को खिलाने पिलाने में इतना ये था। महीने में दो बार तो दादी पिकनिक के लिए ले ही जाती थी, इतना बिजी होती थी, सब कुछ होता था, लेकिन पिकनिक के लिए जरूर दादी ले जाती थी। हम लोगों को भेजती थी, एक ही पहाड़ी पर नहीं चलना है, नया पहाड़ी ढूंढ कर आओ, नया जगह ढूंढ करके आओ। ये जो अपना पीस पार्क बना है, हम लोग आए थे पीस पार्क में पिकनिक करने के लिए, तो ये तो पीस पार्क अभी नाम पड़ा है, ये बहुत अच्छा था। तो वहां के भी दूध वाले दादी के पास आए, दादी हमको जमीन देना है, अच्छा चलो ले लो, जो मांगा दिया, और उसको पीस पार्क बना दिया। एक भाई नैरोबी से आया, सब कुछ वाइंड अप करके और माउंट आबू में अपना बंगला बना लिया, रहने लगा, और दादी के पास आके खड़ा हो गया, दादी मुझे सेवा दो। दादी बोला अच्छा पीस पार्क आप संभालोगे? हाँ दादी, कुछ भी दो। पीस पार्क को किशोर भाई और वसंती बहन बैजुल, तीनों अभी भी हैं, वो संभालते हैं। इतना दादी का विजन। यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी के ग्राउंड होना चाहिए ना, ये दादी का विजन है। इतना दादी का विजन था, सबको खुश करके रखती थी। मक्खन मानी खिलाना है, मुरली सुना रही है, बारिश हो रहा है, अरे आज बारिश बहुत हो रहा है, गरम गरम पकौड़ा खिलाओ। मुरली इधर सुना रही है, गरम गरम पकौड़ा तैयार तल करके क्लास के बाद सबको गरम गरम पकौड़ा खिला रहे। इतना बेहद का दिल था दादी का, इतनी पालना करती थी। माउंट आबू में सर्दी बहुत होती थी, सर्दी का दिन, बहुत सर्दी है, जनवरी का मास है, मुरली सुना रही है, दादी देखेगी किसी के ऊपर ये नहीं है, चादर नहीं है, दादी मुन्नी बहन को बुलाती थी, स्टोर से जितने भी चादर हैं, जिनको नहीं है सबको दे दो, सबको ठंडी लग रही है। दूसरी मुरली सुना रही है ठंडी है, दादी बोलती थी भोली, भोली दादी भंडारी थी, भोली दादी बहुत ठंडी पड़ रही है, आज सब भाई बहनों को गरम गरम हलवा खिलाओ। मुरली पूरा हुआ, गरम गरम हलवा खिलाती थी, मैंने इतनी पालना देती थी कि बाबा के अव्यक्त होने के बाद किसी को यह भासना नहीं आई कि बाबा चला गया। हालांकि बाबा के साथ रही नहीं है, बाबा के साथ हमारी दीदी रही है और दादियां रही है, दादी सेवा में रही है, लेकिन बाबा ने दो दिन में उनमें सब कुछ भर दिया। तो दादी में इतनी ये थी, कुछ कारोबार था, ओम शांति भवन बन रहा था, पहाड़ था वहां जहां ओम शांति भवन बना है, पहाड़ था, अब इतना पैसा नहीं था। सारा दिन मजदूर पत्थर तोड़ते थे, शाम को दादी दीदी हम सब जाकर के पत्थर उठाते थे, दादी पत्थर उठाती थी। सोचो, दादी बोल भी सकती थी कि आप लोग जाकर के भाई लोग हो, इतने यंग लड़के हो, जाकर के पत्थर उठाओ, नहीं, ऑर्डर नहीं करती थी, पत्थर जाकर के उठाती थी, दीदी उठाती थी। अभी दादी पत्थर उठाए और हम देखें, दो घंटा में सारा जो सारे दिन में मजदूर पत्थर तोड़ते थे हम लोग जाके क्लियर कर देते थे, उठा करके अलग रख देते थे। दादी ऐसे, दादी में पावर था। बारिश आ रही है, गेहूं पड़ा है, दादी आकर के घंटी बजा रही है, हम लोग छत से देखते थे घंटी कौन बजा रहा है, दादी बजा रही, भागो, जंप लगा करके सीढ़ियों से आकर के दो मिनट में बारिश आने के पहले गेहूं अंदर, दादी को काम कराने में इतना। लेकिन दादी निर्माण थी, हर चीज शेयर करती थी, हर व्यक्ति को रेस्पेक्ट देती थी, लेकिन पावरफुल भी थी, खाली प्यार ही नहीं देती थी। मैं अपना बात सुनाऊं, एक दिन हम लेट आए थे, घर गए थे या कहां गए थे, एक दिन लेट आए थे, मेडिटेशन हॉल में एनुअल मीटिंग चल रहा था, तो एनुअल मीटिंग में नाश्ता देते हैं, टोली देते हैं, तो ट्रे में प्लेट था, टोली लेकर के हम दादी के पास गए, तो दादी बोलती है मेहमान बन करके आए हो। वो दिन और आज, जब जो छुट्टी लेके जाएंगे, एक दिन भी लेट आज तक नहीं हुआ, एक दिन लेट आए थे, लेकिन दादी शिक्षा भी देती थी, प्यार भी करती थी, शिक्षा भी देती थी, इतनी पालना करती थी। गांव से आए थे, साइकिल चलाना जानते थे, उन दिनों में करुणा भाई बाहर का काम, म्यूनिसपालिटी वगैरह का काम देखता था, कोई वीआईपी आया तो उनको लाकर ले आता था दिखाने के लिए पांडव भवन। तो दादी बोली कि करुणा भाई अकेले करता है, तो किचन का भी काम करते थे, वो भी दादी के कहने से एक किए। तो हम जाते थे, साइकिल पर जाते थे, मंत्री जी को कहते थे दादी जी ने बुलाया है, पांडव भवन यहाँ सामने है, क्योंकि सर्किट हाउस से पांडव भवन नीचे दिखाई देता है, तो बोले कि चलो हम चलते हैं। तो हम बोल, जब वो सीढ़ियों से नीचे उतरते थे तो बोले गाड़ी कहाँ है, हम पीछे से नीचे से आते हैं, साहब आप गाड़ी से आगे से आइए, अतः नहीं नहीं आप मेरे गाड़ी में बैठ जाओ, साइकिल वहां सर्किट हाउस में खड़ी है, उनको वहां ले जाते थे, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो जज हो या कोई भी हो। दादी देखी कि इसके पास ये नहीं है, तो मृत्युंजय भाई आए, तो मृत्युंजय भाई आए तो बेंगलोर से स्कूटर लेके आए, वो बेंगलोर में उनका अपना स्कूटर था, तो लेके आए। तो मृत्युंजय भाई को कहे कि बनारसी के साथ आप जाना सेवा पर, म्यूनिसपालिटी में या जहां भी सेवा ये जाता है तो आप भी जाओ। तो मृत्युंजय भाई हमारे साथ गए, बोले किसमें चलना है, ये साइकिल है पीछे बैठ जाओ, हम साइकिल चलाते हैं। तो बोला कि साइकिल पर चलेंगे, हाँ हमारा तो इसी पर हम सेवा करते हैं। तो मृत्युंजय भाई बोले कि नहीं, मैं स्कूटर लाया हूं, स्कूटर पर चलेंगे। होंगे जो और अच्छी बात है, साइकिल पांडव भवन में रख दिया, स्कूटर से हम लोग जाना आना शुरू किए। फिर मृत्युंजय भाई ने मेरे को स्कूटर सिखाया, और दादी देखा कि एक दिन स्कूटर चला रहे हैं, दादी बहुत हंसी। दूसरे तीसरे दिन कोई दिल्ली का भाई था, वो नया स्कूटर खरीदा, पुराना स्कूटर ला करके दादी को चाबी दिया, मेरे को बुलाई नाश्ते पर, इधर आओ इधर, ये स्कूटर की चाबी है आप लो। इतना दादी ध्यान रखती थी एक एक बच्चे का, एक एक भाई बहनों का, अगर कोई भूल हो जाए तो दादी माफ नहीं करती थी। दादी इतना निर्माण थी, मैं छोटी मोटी भूल हो गई तो हम लोग मेडिटेशन हॉल में ऐसे ही जैसे आप लोग बैठे हो मेडिटेशन कर रहे हो, तो दादी इस दरवाजे से आती थी, लाल लाइट होता था और आकर के झुक करके माफी मांगती थी कि दादी आप लोगों से माफी मांगती है। अरे भूल हमने किया, दादी माफी मांग रही है क्यों? अब तो दादी में इतनी पावर नहीं है कि दादी के प्रेजेंस में ये भूल हो गई है, ये नुकसान हो गया है, हमने नुकसान किया, हमने भूल किया, माफी दादी मांगती थी। इतना पावर, इतना निर्माण, सब दादी को कुछ क्लास कराने की जरूरत नहीं है, एक शब्द से सब पिघल जाते थे, नहीं ये काम नहीं करना है। दादी इतना सबको रिगार्ड रखती थी। यज्ञ के प्रति अगर दादी जा रही है मुरली सुनाने, सवेरा हो गया, एक बल्ब जल रहा है, दादी खुद बंद करती थी, इकोनॉमी, यज्ञ का नुकसान न हो, इतना ध्यान रखती थी दादी। बल्कि हम लोगों को बताती थी कि क्यों आप लोगों का ध्यान नहीं जाता है, दादी का ध्यान जाता है, अभी इस बल्ब की जरूरत नहीं है, लाइट की जरूरत नहीं है, आप लोग ऑफ नहीं करते हो। दादी इतना पालना भी हम लोगों को, आपको बताएं 10 साल मैं ब्रांडे में सोया होगा, मरगोल जो है उस ब्रांडे में सोया होगा। दादी बीच बीच में जाती थी तो दादी गई, और तो दादी गई तो और भाई बहने गए कि दादी जा रही है मरगोल में, तो पूछी कि कौन कौन है यहां सोने वाले, तो उसमें मेरा भी नाम लोगों ने रखा। तो दादी मेरे को बुला के पूछती है कि कहां सोता है, मुझे बरांडे में सोते हैं। तो बोली कि तुमने बताया नहीं, मुझे क्यों बताएं, क्या बताएं, सारा दिन काम सेवा करते हैं, शाम को रात को खाना खा के थक के जाते हैं, सो जाते हैं, फिर सुबह 2:30 बजे आकर के चाय बनाना होता है, फुर्सत कहां होती है बताने की। दादी बोला कि नहीं तुम लाइट हाउस में आ जाओ। इतना ध्यान रखती थी, कोई बीमार हो गया दादी इतनी बड़ी जाती थी उनके रूम में, उनको देखती थी। कॉन्फ्रेंस होता था सन्यासियों के, कॉन्फ्रेंस यहां फर्स्ट टाइम हुआ, जगदीश भाई थे, ओम शांति भवन में स्टेज बनाया जाता था, सबको सम्मान दिया जाता था। एक सन्यासी उसको थोड़ा नीचे स्टेज मिला, वो नाराज हो गया, नाराज होकर के डंडा और ये उठा करके चला गया, रूम में जाके सो गया। जगदीश भाई ने देखा कि ये तो नाराज होके जा रहा है, तो सारा गड़बड़ हो जाएगा, भाग के पीछे पीछे गए, स्वामी जी गलती हो गई है माफ कर दीजिए, रूम बंद कर दिया, रूम में चला गया, अंदर से बंद कर दिया। जगदीश भाई आकर के दादी को बताए, दादी ने कहा कि कोई बात नहीं, चलो दादी चलती है। दादी आई और स्वामी जी के दरवाजे पर खड़े होकर कहती है, स्वामी जी दादी जी आपसे मिलना चाहती है, भूल हो गई है, क्षमा कर दीजिए। कहां इंचार्ज, कहां हेड, और एक सन्यासी को जाकर के क्षमा मांगती। सन्यासी दादी का आवाज सुन करके दरवाजा खोला, दादी हाँ जोड़कर क्षमा मांगती है, तुरंत आ गया। माने दादी में इतना निर्माणता था, इतना निर्माण थी। तो ये बाबा का काम है, ये जो आप बैठे हैं, दादी ने मीटिंग बुलाई, टाइम होता जा रहा है, मैं तो और कुछ सुनाना था लेकिन क्या क्या सुनाऊं, तो मीटिंग बुला करके ये 8-1 साल के अंदर ये इतना बड़ा ये बना दिया है। दादी में वो पावर थी, विजन था, मीटिंग करके सब जगह डायरेक्शन दे दिया, हर ब्राह्मण 1 रुपया रोज भंडारी में डालना है, ज्ञान सोर बन रहा है, 1 पैसा नहीं था और इतना बड़ा खड़ा हो गया। सोच करण कराओ हर दादी, दादी को विजन था भाई 1,00,000 का सभा में दादी को भाषण करना है। गुजरात के सरला बहन जोन इंचार्ज थी, उनको फोन किया भाई ऐसे ऐसे करना है, दीदी ने ये करके 1,50,000 का सभा यूनिवर्सिटी हॉल ग्राउंड में 1,50,000 की सभा। तो दादी को विजन आता था, इतना यज्ञ को बढ़ाया। बाबा के होते 125 सेंटर थे, दादी 8,000 ब्रांचेज खोला, एक सेंटर नहीं 8,000 ब्रांचेज खोला। उनकी निर्माणता, उनकी सरलता, उनकी तपस्या, उनकी प्यूरिटी, कहां भी जाती थी लोग मेल्ट हो जाते थे, पिघल जाते थे, चाहे यज्ञ निवासी हो या बाहर के हो। टीचर्स बहनों को मीटिंग करती थी, क्लास कराती थी, जो कहती थी हां दादी वही करना है। उनके बरोबर के सब दादियां थी, क्योंकि इस यज्ञ में 170 थी, सब इतना दादी को प्यार करते थे, मैं आंखों से देखा था। ब्रिजेंद्रा दादी हमारी, बाबा के पुत्र वधु, जो भगवान को रिसीव करने वाला, बाबा को साक्षात्कार हुआ, बाबा सभा से उठ करके रूम में गया तो ब्रिजेंद्रा दादी सोचा कि बाबा ऐसा कभी करते नहीं है, कुछ बाबा को तबीयत खराब होगी तो उठ के गए हैं, तो पीछे पीछे उनके रूम में गई और रूम में देखी बाबा बैठा है, सारा रूम लाल लाइट पावरफुल वातावरण से भरा हुआ है। बाबा तो ट्रांस में थे, भगवान को रिसीव दादी ब्रिजेंद्रा ने किया। तो ये दादियां, इतनी बड़ी बड़ी दादियों के ऊपर हमारी दादी थी, लेकिन सबको मिला करके इतना प्यार देती थी, किसी को ये नहीं आया कि इनसे तो मैं बड़ी हूं, किसी को नहीं आया, सब प्यार से दादी, जो दादी कहे, जो दादी की आज्ञा हो। दादी मुरली ऐसे नशे से चलाती थी कि सब झूम जाते थे। तो इस तरह से, लेकिन इतनी निर्माण, एक बार की बात है, एक भाई, नाम नहीं बताएंगे, एक भाई, दादी दिल्ली में गई थी, एक भाई दादी को बहुत इंसल्ट किया, बहुत बोला, दादी चुप, कुछ नहीं बोली। फिर शाम के टाइम में बोलते कि भाई चाय पिया है, एक दादी के साथ आकर के चाय पियो। दोपहर को इंसल्ट किया, शाम को दादी बुला रही है। एक सेकंड में दादी भूल जाती थी। हम लोग पूछते थे, मीडिया वाले पूछते, दादी इतनी बड़ी संस्था है, इतनी भाई बहने हैं, इतनी प्रॉब्लम होता है, कि आपको टेंशन नहीं होती है? दादी बोलती थी, भाई टेंशन क्या होता है, दादी तो रूम में जाती है, तकिए पर सिर रखती है और दादी खुराटे लेना शुरू कर देती है, टेंशन नहीं। मीटिंग किया, मीटिंग में सारी बातें रख करके चली जाती थी, ये नहीं सोचती थी मीटिंग में ये हुआ, इसने इंसल्ट किया, इसने माना नहीं, इसने ये किया, चलता है ना बातें। 2-3 दिन पहले की मुरली था, अव्यक्त मुरली, भाई जज को जजमेंट देना है तो एक पक्ष को जजमेंट देना, दोनों को तो जजमेंट नहीं देगा, तो एक पक्ष को जजमेंट देगा तो एक का तो अच्छा होगा, दूसरा तो नाराज होगा, लेकिन नहीं, दूसरे को भी नाराज नहीं करती थी। एक बार की मेरी अपना पर्सनल अनुभव बता देते हैं, हम सब्जी बनाए थे, पेशेंट का बनाते थे, तो सब्जी बनाए, एक बहन थी, वो आकर दादी को रिपोर्ट किया, दादी क्या बनाता है ये करो, दादी मंगाई, खाई, दादी को बहुत अच्छा लगा, लेकिन उसके मुख पर दादी बोलती है, भाई थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा और अच्छा बनाना, इतना ही कहा। दादी बाद में अपने रूम में बुला करके बोलती है, बनारसी सब्जी बहुत अच्छा था, आपकी दोष नहीं है, लेकिन उस बहन को खुश करने के लिए मेरे को तो कुछ बोलना तो पड़ेगा, तो बोला कि थोड़ा ध्यान देना, थोड़ा अच्छा करना। दादी इतना एक एक का, दिल रखती थी, उसको भी खुश किया, मेरे को भी खुश किया। देखो भाई, वो बहन को भी खुश किया कि भाई चलो, हम वो खुश हो गए कि चलो और अटेंशन देगा, और मेरे को बुला करके, पर्सनल बुला करके बोलती है, सब्जी अच्छा था लेकिन क्या करें, उसको खुश करने के लिए थोड़ा तो मुझे कुछ कहना पड़ेगा। ऐसे दादी का एडमिनिस्ट्रेशन था, ऐसे सारी दुनिया दादी दादी, जैसे बाबा बाबा करते हैं, मम्मा मम्मा कहते हैं सारी ब्राह्मण परिवार, आज सारा ब्राह्मण परिवार दादी 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 कहता है। क्यों दादी ऐसे चली है? दादी हमेशा सुनाती थी, बड़े बनना है तो झुक करके चलना है, झुकेंगे नहीं टूट जाएंगे। तो दादी झुक करके चलती थी, छोटे के साथ छोटे, बड़े के साथ बड़े होकर के रहती थी। छोटा बच्चा आ गया, उसके साथ ऐसे मिल गुल जाएगी जैसे बच्चों से बात करती है। बच्चों का प्रोग्राम होता था, बच्चों के साथ जा करके उनके साथ खेलना, उनके साथ ये करना, उनको खुश करना। बच्चे तुमको क्या पसंद है? आइसक्रीम। अरे दादी आइसक्रीम खिलाएगी। क्या पसंद है? ये पसंद है। दादी सबका दिल रखती थी, ये नहीं कि ये कहां से आएगा कहां से नहीं, बना कर देना है, बच्चे हैं ना उनको देना है, नहीं तो बाहर खाएंगे बाहर जाएंगे। तो दादी का मतलब कि इतना विजन था। तो ये हमारी दादियां भूल से शरीर में आ गई थी, नीति तो वतन के फरिश्ते थे। यज्ञ स्थापना करना था तो शरीर में आकर के यज्ञ के, क्योंकि इस कलयुगी पहाड़ को उठाना है तो साधारण शरीर तो नहीं चाहिए ना, साधारण विजन तो नहीं चाहिए। तो हमारी ये दादियां, दादी गुलजार, दादी जानकी, किसके बारे में बताऊं, टाइम हो गया है। तो दादी गुलजार को भी देखा, नजदीक से देखा, दादी गुलजार इतना, कोई भी काम हो वो तो बाबा की याद में मस्त हैं। किसी को आज तक टोका नहीं, कोई शिक्षा नहीं दिया। दादी बैठी है ना, रिस्पेक्ट दादी के प्रति इतना था, जो दादी कहेगी वही करना है, कभी ये नहीं। निर्माणता कितनी थी, त्याग कितना था उन दिनों में, मैं दादी का तो त्याग बताया नहीं। दादी अभी जो क्या कहेंगे, ये ब्रांडा है ऑफिस जो हम लोगों का है, उसमें विदेशियों का ऑफिस बना है पासपोर्ट वगैरह रखने के लिए, बड़ा हॉल था। इस हॉल में दादी 6-7 बहनों के साथ सोती थी, स्नान करने कहां जाती थी? जो अभी किचन बना है, नया किचन, अभी तो नया नहीं कहेंगे बहुत पुराना है, जो टोली है पांडव भवन का टोली का किचन, वहां सर्विस वाला बाथरूम होता था छोटे छोटे, और दादी अपना कपड़ा लेकर के, हम लोग गर्म पानी रख के आते थे, दादी जा करके सब दादियां वहां स्नान करती थी। इनकी त्याग, आज तो हर रूम में अटैच बाथरूम में हॉट रनिंग वाटर, कोल्ड रनिंग वाटर होता था, उन दिनों में नहीं होता था। उन दिनों में हमारी दादियों का त्याग, हमारी दादियों की तपस्या यहां तक लाया है। तो गुलजार दादी के बारे में सुना रहा था कि गुलजार दादी भी एकदम, देखो रात भर बाबा उनके शरीर में आया है, जो रात भर जगा है तो उसको दिन में थोड़ा रेस्ट चाहिए कि नहीं चाहिए? कोई रूम नहीं था, मनोहर दादी और गुलजार दादी एक ही रूम में, कहां आप जाएंगे दादी के रूम देखेंगे तो वहां एक सीढ़ी है ऊपर जाने के लिए, तो सीढ़ियों के नीचे एक रूम था छोटा, उसी में दादी गुलजार और मनोहर दादी सोते थे। मनोहर दादी उन दिनों में करनाल से आई थी, पंजाब की सेवा पर थी, दादी ने उनको बुलाया था, तो नेचुरली पंजाब के भाई बहने आएंगे, हमारी दादी यहां बैठी है तो मिलने आएंगे। अभी मनोहर दादी को मिलने के लिए कोई जगह नहीं थी तो अपने रूम में बुला लेती थी। इधर गुलजार दादी पतली शॉल लेकर के ओढ़ करके लेटी हुई है, इधर मनोहर दादी मिल रही है भाई बहन से। कभी दादी ने ये नहीं कहा कि मनोहर दादी मैं रात भर जगी हूं, बाबा आया था थोड़ा मेरे को सोने दो, नहीं, वो अपना पार्टी से मिल रही है, दादी वहां रेस्ट कर रही है। इतनी त्याग, हमारी दादियों का त्याग आप सुनेंगे हैरान हो जाएंगे। हमारी जानकी दादी का त्याग, लंदन गई वहां भी उनका त्याग, एक ही था फर्श पर सोती थी, कमर का दर्द यहां से ही था, उन्होंने अपने लिए संदल नहीं मंगवाया, जैसे यहां दिवाली पर नया नया सब चीज घर में लाते हैं तो वहां क्रिसमस पर सब कुछ पुराना बाहर फेंक देते हैं, म्युनिसिपैलिटी ले जाती है और नया ले आते हैं, तो किसी ने अपने दरवाजे को पल्ले को निकाल करके बाहर डाल दिया था। और तो दादी दो दिन देखा, तीन दिन देखा, एक सप्ताह देखा, एक सप्ताह से पड़ा है कोई नहीं ले जाता है, तो दादी भाइयों से दो ईंट इधर, दो ईंट चार ईंट लगा करके पल्ले पर, पल्ले को ये संदल बना दिया, उस पर सोती थी और उस पर क्लास मुरली वहीं क्लास, एक ही रूम था। विदेश जा करके सोचो कितना इनका त्याग, आज इन दादियों का त्याग, इन दादियों की तपस्या आज हम लोग फल खा रहे हैं। जानकी दादी जब पूना में थी तो बाबा, कोई कन्याएं बाबा के पास आती थी तो ट्रेनिंग के लिए बाबा भेज देते थे, जाकर के जानकी से ट्रेनिंग लो, तो दादी के पास बहुत सारी कन्याएं थी, सब कन्याओं को ड्यूटी लगा करके दादी एक कोने में बैठ करके चुप बैठी है। एक कन्या का दादी के ऊपर ध्यान गया, दादी एक घंटा हो गया चुप बैठी है, दो घंटा हो गया चुप बैठी है, किसी को देख भी नहीं रही है कि कौन क्या कर रहा है। तो जाकर के पूछती है, दादी आप क्या कर रहे हो, दो ढाई घंटा से बैठे हो। अब तो दादी अपने को कूट रही है, सोचो न उखली है, न मुसल है, न हथौड़ी है, न कुछ है, कूट रही है, कूट रही है मतलब तपस्या कर रही है अपने आप को ये करने के लिए, पावर भरने के लिए। तो दादियों को एक मिनट भी मिलता था तो तपस्या के अलावा, बाबा के अलावा उनको कोई सूझता नहीं था। मम्मा की एक बात सुना देते हैं, पूरा करेंगे। मम्मा बॉम्बे में थी, रमेश भाई के साथ गाड़ी में जा रही थी, पीछे निर्भय भाई बैठे थे, आगे मम्मा बैठी थी, रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे। साइन बोर्ड आया, बहुत अच्छा था, तो साइन बोर्ड पर तो नजर पड़ती है और आगे बैठने वालों को तो पहले नजर पड़ती है। तो रमेश भाई गाड़ी चला रहे थे, आगे चले गए तो मम्मा को कहा, मम्मा ये साइन बोर्ड देखा। मम्मा तो बाबा के पास है, नहीं कुछ बोला। दोबारा बोलते हैं, मम्मा ये साइन बोर्ड देखा। तो मम्मा रमेश भाई की तरफ इधर मुंह करके कहती है, रमेश जब मम्मा को काम होता है तो शरीर में होती है, काम नहीं होता है तो मम्मा बाबा के पास होती है। देखो इन दादियों की तपस्या, तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि हम लोग भी सेवा नहीं है तपस्या करें। रास्ते जा रहे हैं, भोजन पर जा रहे हैं, कहां भी जा रहे हैं, बाबा की याद में चलें। क्योंकि अब दादियां भी नहीं है, बाबा भी नहीं है, लोगों को कौन प्रत्यक्षता में कौन सामने आएगा। पहले तो दादी को देख करके लोग खुश हो जाते थे, इनकी दादी है, बाबा को देख करके खुश हो जाते थे, इनकी बाबा हैं। अब कौन है, न दादी है, न बाबा है, न कोई है, कौन है? अब दादियों का, बाबा का, हम सब पर ये आस है कि इन दादियों का रोल हम बाबा के बच्चों को प्ले करना है। कैसे करेंगे? बाल सफेद करके नहीं, हम अपने में इतनी पावर भरें, इतनी योग्यता भरें, किसी को दृष्टि दें, उनको बाबा दिखाई दे, उनको दादी दिखाई दे, हम ना दिखाई दे। बाबा ने भी साकार बाबा ने भी किया ना, बाबा साकार बाबा दृष्टि देते थे कौन दिखाई देता था? श्री कृष्ण दिखाई देता था, श्री नारायण दिखाई देता था, फरिश्ता दिखाई देता था, बाबा नहीं दिखाई देते थे। तो उसी तरह हम लोगों को इतनी तपस्या करना है कि हमारे द्वारा बाबा का साक्षात्कार हो। ओके, ओम शांति, थैंक यू।